पृष्ठ संख्या 369 अध्याय 18 सापेक्षवाद तथा इतिहासवाद रिलेटिविज्म एंड हिस्टोरिसिज्म प्राचीन यूनान दार्शनिकों एवं विचारकों का केंद्र रहा है। प्लेटो अरस्तु सुकरात आदि दार्शनिक विचारों ने ज्ञान क्षितिज को सुशोभित करके गौरवपूर्ण ख्याति प्राप्त की है। सोफिस्ट संप्रदाय के संस्थापक प्रोटागोरस के को सापेक्षवाद का जनक कहा जाता है। इस महान विचारक ने ऐसे सापेक्षवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसके आधार पर ज्ञानवाद विज्ञानवाद तथा इतिहासवाद का खंडन किया गया है। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि अभी तक सापेक्षवाद के परिवेश में इतिहास का अध्ययन क्यों नहीं किया गया। यद्यपि आधुनिक इतिहास के कोलंबस एवं प्रत्यक्षवाद के जनक रामके ने वैज्ञानिक विधाओं से अतीत संबंधी यथार्थ ज्ञान के प्रस्तुतीकरण का सराहनीय प्रयास किया है, सापेक्षवादी सिद्धांतों के आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। परिणाम स्वरूप रामके द्वारा अतीत का यथार्थ प्रस्तुतीकरण इतिहासवाद का अंतिम सत्य नहीं अपितु भ्रांति मूलक विचार प्रतीत होता है। अतीत के अध्ययन में सापेक्षवाद की उपयोगिता अधिकांश इतिहासविदों का ध्यान अभी तक आकृष्ट नहीं कर सका। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका के कतिपय इतिहासविदों का ध्यान इस सापेक्षवाद के परिवेश में इतिहास अध्ययन की ओर आकृष्ट हुआ। परिणाम स्वरूप कार्ल वियर्ड बेकर एडम स्काफ तथा मार्विक जैसे महान इतिहासकारों ने सापेक्षवाद तथा इतिहासवाद का गहन अध्ययन करके ऐतिहासिक गवेषणा का एक नवीन आदर्श प्रस्तुत किया है। सापेक्षवादी सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविज्म सापेक्षवाद के जनक प्रोटागोरस का जन्म यूनान के अबदेरा में हुआ था। इनका जीवन काल 481 बीसी से 411 बीसी के बीच रहा है। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र एथेंस को चयन किया क्योंकि एथेंस अनेक दार्शनिकों एवं विचारकों की कर्म भूमि रही है। इनकी प्रमुख रचनाओं में ईश्वर ऑन द गॉड्स गणित ऑन मैथमेटिक्स एवं वस्तुओं की मूल अवस्था ऑन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ थिंग्स है। प्रोटागोरस के सापेक्षवादी दर्शन का अभिप्राय यह सिद्ध करना था कि मानव सभी पदार्थों का मापदंड है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। उनका यह प्रसिद्ध वाक्यांश न केवल उनके दर्शन का अपितु समस्त सोफिस्ट दर्शन का संक्षिप्त सार तत्व है। यही मानव की यदि मानव ही सभी पदार्थों का मापदंड है तो ऐसी परिस्थिति में सार्वभौम नैतिकता असंभव है। नैतिक नियमों की स्थापना रीति रिवाज तथा परंपरा पर आश्रित है। परंपराएं परिवर्तनशील है, अतः सर्वमान्य नैतिक नियम एक स्वप्न लोकीय कल्पना है। नैतिक नियमों के संबंध में प्रोटागोरस को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। सापेक्षवादी सोफिस्ट अनुयायियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान मानवतावाद है। इसीलिए उन लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मानव जाति के उपयुक्त अध्ययन का एकमात्र माध्यम मानव है। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इस सूत्र के आधार पर प्रोटागोरस तथा सोफिस्ट दार्शनिकों ने ज्ञानवाद नॉलेज विज्ञानवाद साइंटिफिज्म तथा इतिहासवाद की कटु आलोचना की है। एक ज्ञानवाद ज्ञानवादी दार्शनिकों के दर्शन का एकमात्र अभिप्राय सत्य की गवेषणा है। आदि शंकराचार्य का अभिमत है कि परम सत्य परम ब्रह्म ही सत्य है और उसे एकमात्र ज्ञान के द्वारा ही जान सकते हैं। बुद्धिजीवी दार्शनिक डेकार्त स्पिनोजा एवं लाइबनिट्ज ईश्वरवादी थे। ईश्वर पूर्णतम चिदुण है और चिदणुओं ईश्वर क्षम्यताम ईश्वर पूर्णतम चिदणु है और चिदणुओं का चिदणु मोनाड ऑफ मोनाड कहा गया है। वह सभी चिदणुओं का कारण है। ईश्वर स्वयं अकारण तथा स्वयंभू है। वह स्वयं सभी चिदणुओं का सृष्टा एवं सर्वोच्च विदणु तथा चिदणुओं में सामंजस्य का कारण है। लाइबनिट्ज सर्वेश्वरवादी तथा ईश्वरवादी दोनों प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार समस्त जगत चेतना है, क्योंकि परम चेतना ईश्वर की अभिव्यक्ति है, वही सत्य तथा सत्य का प्रतिबिंब है। भारतीय दर्शन में भी आदि शंकराचार्य ने परम ब्रह्म को निराकार सत्य तथा जगत को माया से परिपूर्ण स्वीकार किया है, परंतु अधिकांश दार्शनिकों ने परम ब्रह्म को निर्गुण तथा सगुण माना है। लाइबनिट्ज सगुण ब्रह्म के उपासक थे। उनके अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा पूर्णतम है। पूर्णता उनका आवश्यक गुण है, पूर्णता के कारण ही वह अनंत है। लाइबनिट्ज इतिहास को स्वतंत्र मानते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं मानते। परम ब्रह्म ईश्वर भी नियमों के अनुकूल कार्य करता है, उसका सभी कार्य नियत तथा नियमित होता है। इसी कारण लाइबनिट्ज परम ब्रह्म को निरंकुश सम्राट नहीं अपितु प्रधानमंत्री मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में परम ब्रह्म राम निर्गुण तथा सगुण है। राम ब्रह्म पर मारथ रूपा अविगत अलक अनादि अरूपा, उसी परम ब्रह्म राम को सगुण रूप में देखते हुए कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी चुक पानी। परंतु सीता स्वयंवर में उसी परम ब्रह्म राम के विषय में कहते हैं, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। सापेक्षवादी दार्शनिकों विशेष रूप से एनेक्जेगोरस तथा हेक्लाइटस के अनुसार अनंत सत्य केवल भ्रांति है। सत्य का स्वरूप सापेक्ष है, कुछ भी सत्य नहीं है। यदि सत्य है भी तो वह उसे जान नहीं सकते। यदि सत्य जान भी सकते हैं तो उसे समझाना अत्यंत जटिल एवं कठिन है। ज्ञानवादियों की सत्य संबंधी अवधारणा स्वप्न लोकीय कल्पना है। पीलिया रोग की भांति वे जगत की सभी वस्तुओं को पीला देखते हैं। पीलिया रोग की समाप्ति के पश्चात वे जिन वस्तुओं को पीला देखते थे वे सभी सफेद दृष्टिगोचर होते हैं। सापेक्षवादी सिद्धांत के अनुसार मानव सभी पदार्थों का मापदंड है, अतः विचार का स्वरूप मानव केंद्रित है। सत्य संवेदना जन्य है, संवेदनाएं व्यक्तिगत होती हैं, अतः सत्य आत्म केंद्रित है। हमारे लिए सत्य वही है जिसकी अनुभूति हम स्वयं करते हैं। दूसरों के लिए सत्य का स्वरूप भिन्न हो सकता है, परिणाम स्वरूप सत्य विषयगत न होकर आत्मगत होता है। सत्य सापेक्षवादियों की दृष्टि से इस प्रकार व्यक्तिगत तथा आत्मगत सत्य का स्वरूप सार्वभौमिक सत्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार जो सार्वभौमिक सत्य नहीं है उस सत्य को ज्ञानवादियों ने परम सत्य कहा है। ज्ञानवादियों की यह अवधारणा भ्रांति मूलक है। इस प्रकार ज्ञानवादियों की परम सत्य ही की अवधारणा पर सापेक्षवादी दार्शनिकों ने कठोरतम प्रहार किया है। दूसरा, विज्ञानवाद। प्लेटो के अनुसार विज्ञान ही विश्व का मूल कारण है। अरस्तु का अभिमत है कि प्लेटो का विज्ञानवाद पांच उपादानों पर आधारित है। एक, विज्ञान मूलक तर्क आर्ग्यूमेंट ऑफ साइंस। दो, अभेद मूलक तर्क आर्ग्यूमेंट ऑफ वन एंड मेनी। तीन, अभाव मूलक तर्क द आर्ग्यूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ थिंग्स दैट आर नो मोर। चार, संबंध मूलक तर्क द आर्ग्यूमेंट ऑफ रिलेशन। पांच, मनुष्य मूलक तर्क द आर्ग्यूमेंट इम्प्लाइंग द फैलेसी ऑफ थर्ड मैन। प्रोफेसर जेलर ने विज्ञान के महत्व को बताते हुए अरस्तु के उपर्युक्त पांच तर्कों को तीन दृष्टियों से व्यक्त किया है। एक, सत्ता की दृष्टि। विज्ञान की सत्ता है, विज्ञान वस्तुओं का सार तत्व होते हुए भी वस्तुओं से पृथक है, विज्ञान नित्य तथा वस्तु अनित्य है। दो, उद्देश्य की दृष्टि। दो, उद्देश्य की दृष्टि। विज्ञान की सहायता से ईश्वर इंद्रिय जगत के पदार्थों की सृष्टि करता है। विज्ञान ही मूल बिंब है तथा संपूर्ण जातिगत पदार्थ विज्ञान के प्रतिबिंब होते हैं। तीन, स्वरूप की दृष्टि लॉजिकली से विज्ञान सामान्य तथा विभिन्न वस्तुओं का सार तत्व है। विज्ञान का अभिप्राय सजातियों को एकत्र करना तथा विजातियों से इनका भेद स्पष्ट करना है। चार, ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान की दृष्टि से विज्ञान ही ज्ञान का विषय है। प्लेटो के अनुसार ज्ञान तथा विज्ञान का विषय नित्य तथा अपरिहार्य होना चाहिए। विज्ञान ही ज्ञान का यथार्थ विषय है। विज्ञान सजातीय वस्तुओं का सार तत्व है। 5. रहस्य की दृष्टि से विज्ञान शिव तत्व आइडिया ऑफ गॉड है। अतः सभी विज्ञान उस परम शिव अथवा शुभ की अभिव्यक्ति है। परिणाम स्वरूप विज्ञान नित्य शाश्वत अपरिणामी सामान्य सार्वभौम निरपेक्ष स्वतंत्र परमार्थिक तत्व है। विज्ञान सबका कारण होते हुए भी अकारण है। विज्ञान सभी वस्तुओं का आधार होते हुए भी स्वयं निराधार है क्योंकि वह स्वयंभू है। विज्ञानवाद की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ साइंटिफिक्स। विज्ञानवाद के इस अवधारणा की आलोचना सापेक्षवादी रिलेटिविज्म दार्शनिकों ने की है। सापेक्षवादी दर्शन का सार तत्व है कि सृष्टि के सभी तत्व गतिशील तथा परिवर्तनशील है। सापेक्षवाद की इस अवधारणा में कुछ ही नित्य शाश्वत निरपेक्ष तथा सार्वभौम नहीं है। इस प्रकार ज्ञानवाद तथा विज्ञानवाद में कुछ भी शाश्वत तथा निरपेक्ष नहीं है। 1850 में लैंगलायस तथा चार्ल्स सेनोबास ने सापेक्षवाद के परिपेक्ष में विज्ञानवाद पर प्रकाश डालते हुए कहा है, सभी वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता पुनरावलोकन संशोधन तथा समसामयिकता होनी चाहिए। वैज्ञानिक यह दावा नहीं करते हैं कि उनका निष्कर्ष शाश्वत है। वह आशा नहीं करता है कि उसकी उपलब्धि का अध्ययन भावी पीढ़ी न करे तथा इससे वह वैज्ञानिकों के इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करे। इन वैज्ञानिकों के लिए इतना ही पर्याप्त है कि उनके शोध में संशोधन होता रहे जो ज्ञान कोष की अभिवृद्धि करे। कोई भी न्यूटन तथा लोवोजियर का अध्ययन नहीं करता। उनके लिए यही गौरव का विषय है कि उनके परिश्रम ने भावी पीढ़ी के शोधकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया है जिनकी उपलब्धियों पर पुनः संशोधन अपरिहार्य है। यह निरंतरता का द्योतक बना रहेगा। इस प्रकार सापेक्षवादी विचारकों की अवधारणा में गतिशीलता तथा परिवर्तन विज्ञान का अपरिहार्य तत्व है। परिणाम स्वरूप विज्ञानवाद में नित्य शाश्वत निरपेक्ष की कल्पना यथार्थ नहीं अपितु स्वप्न लोकीय है। विज्ञानवाद में कुछ भी शाश्वत नित्य निरपेक्ष नहीं होता है। शाश्वत निरपेक्ष तथा नित्य की अवधारणा व्यक्तिगत है। इसे सार्वभौमिक निरपेक्ष स्वीकार करना एक महान भूल होगी। इतिहासवाद तथा सापेक्षवाद। विज्ञान के आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने अनेक सामाजिक धार्मिक तथा अंतरिक्ष संबंधी अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन कर शिक्षित समाज को चिंतन करने के लिए विवश कर दिया कि यदि इतिहास में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से अतीत संबंधी यथार्थ ज्ञान के लिए इतिहास की उपादेयता में अभिवृद्धि होगी। फ्रांस में टेने, जर्मनी में रांके, अमेरिका में चार्ल्स बियर्ट तथा इंग्लैंड में जेबी ब्यूरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सत्रारंभ के अवसर पर एक्टन के उत्तराधिकारी रेगियस प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक। जब तक इतिहास को कला स्वीकार किया जाएगा इतिहास में सूक्ष्मता तथा यथार्थता का समावेश संभव नहीं हो सकता। और मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप इतिहास चिंतन के क्षेत्र में प्रत्यक्षवादी विचारधारा का अभ्युदय हुआ। प्रत्यक्षवाद के जनक तथा आधुनिक इतिहास के कोलंबस रांके ने भी इस एक आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका अभिप्राय अतीत के यथार्थ तथ्यों का प्रस्तुतिकरण था। इसके लिए रांके ने धूल धूसरित ऐतिहासिक स्रोतों का संपादन किया तथा स्थान स्थान पर अपने अभिभाषण द्वारा अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य से अपने शिष्यों को प्रशिक्षित किया। परिणाम स्वरूप इतिहास चिंतन में नवीन विचार स्वयमेव प्रस्फुटित होने लगे। इस प्रकार प्रत्यक्षवादी इतिहासकारों का एकमात्र अभिप्राय अतीत के यथार्थ प्रस्तुतिकरण को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करना था जिसे विज्ञान की भांति सार्वभौमिक मान्यता से अभिसंचित किया जा सके। अर्नेस्ट लेविस 1842 से 1922 ने फ्रांस के इतिहास 1900 से 1911 का संपादन वैज्ञानिक विधाओं द्वारा किया। रेगियस प्रोफेसर एक्टन ने कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री की को वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत कर एक ऐसा सर्वमान्य इतिहास प्रस्तुत किया जो सभी के लिए ग्राह्य हो सके। इस पुस्तक के विषय में एक्टन ने लिखा है कि दैट अवर वाटरलू मस्ट बी वन दैट सेटिस्फाइज फ्रेंच एंड इंग्लिश जर्मन एंड डच अलाइक दैट नोबडी कैन टेल विदाउट एग्जामिनिंग द लिस्ट ऑफ ऑथर्स वेयर द बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड लेट डाउन द पेन एंड वेदर फेब्रिन और गॉस्केट लाइबरमन और हरिसन टुक इट अप। इस प्रकार एक्टन वाटरलू तथा डच सभी प्रकार एक्टन वाटरलू का ऐसा इतिहास प्रस्तुत करना चाहते थे जिसे फ्रांसीसी अंग्रेज जर्मन तथा डच सभी स्वीकार कर सके। ट्रेवेलियन के अनुसार भी वैज्ञानिक विधा की उपादेयता तथा ऐतिहासिक आंदोलन ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन साक्ष्यों के मूल्यांकन तक ही सीमित रहना चाहिए। अतीत के यथावत प्रस्तुतिकरण के लिए अनेक विद्वानों ने ऐतिहासिक विधा की गवेषणा पर अनेक रचनाएं की हैं। इनमें ड्रायसन की एनसाइक्लोपीडिया एंड मेथोलॉजी ऑफ हिस्ट्री 1868 रांके के इतिहास अवधारणा की पुष्टि करता है। इतिहास विधा पर सबसे महत्वपूर्ण रचना सी बी लॉन्गलायस तथा चार्ल्स सेनोबॉस 1854 से 1942 की इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री है। इन विद्वानों ने इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक विधा के प्रयोग की उपादेयता को अपरिहार्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। 20वीं सदी में अनेक विद्वानों ने अपनी विभिन्न रचनाओं द्वारा इतिहास अध्ययन के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान किया है। सापेक्षवाद के संदर्भ में इतिहासवाद की आलोचना क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिसिज्म एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेटिविज्म अतीत के रहस्यवादी एवं अदृश्य स्वरूप में अनेक दार्शनिकों को इतिहास अध्ययन के लिए उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया है। सर्वप्रथम दार्शनिकों तथा तत्पश्चात सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहासवाद की कटु आलोचना द्वारा इतिहास संबंधी प्रत्यक्षवादी अवधारणा पर कठोरतम प्रहार किया है। इन लोगों ने हिगेल क्रोचे रांके कार्ल मार्क्स तथा कॉलिंगवुड की अवधारणाओं के खोखलेपन को समाज के समक्ष प्रस्तुत कर इतिहास अध्ययन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का नेतृत्व किया है। सापेक्षवादी अवधारणा की विशेषता गतिशीलता तथा परिवर्तन है। सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है। विचार ज्ञान विज्ञान तथा इतिहासवादी विचार निरंतर परिवर्तनशील है। इस प्रकार इतिहासवाद का अभिप्राय वैचारिक सामाजिक राजनैतिक मूल्य नैतिकता तथा आचार शास्त्र का अध्ययन होता है। इन परिवर्तनों का अध्ययन ही सापेक्षवाद है। डब्ल्यू स्टॉक का अभिमत है कि इतिहासवाद ज्ञान का समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। उनके अनुसार इतिहास की व्याख्या अथवा इतिहासकार का न्याय ऐतिहासिक सामाजिक परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होता है। सापेक्षवाद के परिवेश में उनका न्याय भविष्य की परिवर्तनशील परिस्थितियों के परिवेश में उसकी अमान्यता अथवा अस्वीकृति अपरिहार्य है। इसलिए क्रोचे ने समस्त इतिहास को समसामयिक इतिहास कहा है। अतः सभी विद्वानों ने प्रत्येक युग में सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार इतिहास लेखन की आवश्यकता को स्वीकार किया है। समसामयिकवादी ने इतिहास संबंधी दृष्टि अथवा इतिहासकार के मस्तिष्क को सदैव प्रभावित किया है। इसी से सापेक्षवादी अवधारणा की पुष्टि होती है। समसामयिकवाद के प्रभावों से कोई भी इतिहासकार अपने को उन्मुक्त नहीं कर सकता, यह इसकी व्यवस्था है। सापेक्षवादियों की अवधारणा है कि इतिहास की अपनी गति तथा प्रवाह होता है। स्टार्क ने अपनी रचना ज्ञान के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में सामाजिक परिस्थिति जन्यता सोशली कंडीशनिंग को स्वीकार किया है। भगवान गौतम बुद्ध महावीर स्वामी रामानंद तुलसीदास एवं महात्मा गांधी की इतिहास में अभूतपूर्व सफलता का एकमात्र कारण यह था कि उन महापुरुषों ने युग की नाड़ी को पहचाना तथा इतिहास प्रवाह के अनुरूप अपनी उपलब्धियों द्वारा इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार समसामयिकवाद के परिवेश में इतिहासवाद का परिवर्तनशील स्वरूप सापेक्षवाद है। वर्तमान के संदर्भ में अतीत का परिवर्तन अपरिहार्य है, क्योंकि अतीत वर्तमान पर आधारित है। अतीत के परिवर्तन का अभिप्राय समसामयिकवाद के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर अतीत संबंधी दृष्टिकोण में सापेक्षवादियों द्वारा परिवर्तन करते हुए ज्ञानवाद, विज्ञानवाद तथा इतिहासवाद संबंधी सत्य की अवधारणा को मूल रूप से स्वीकार कर दिया है। एक, ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट। E.H. कार के अनुसार ऐतिहासिक तथ्य मछली विक्रेता के शिलापट पर सजाई गई मछलियों की भांति नहीं है, वे अगाध समुद्र में तैरती हुई मछलियों की भांति होते हैं। यह भाग्य पर निर्भर करता है कि मछुआरा रूपी इतिहास का समुद्र के किस भाग का चयन करता है तथा किस यंत्र का प्रयोग करता है। ये दोनों कारक उसके चयन को निर्धारित करते हैं कि इतिहासकार किस प्रकार के तथ्यों का संकलन करना चाहता है। इतिहासकार केवल उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जिसने अतीत की घटना को प्रभावित किया है। ऐतिहासिक तथ्य सामाजिक होता है, क्योंकि इसने सामायिक समसामयिक अतीत में सामाजिक व्यक्तियों के विचारों को प्रभावित किया है। प्रायः व्यक्तियों का विचार ऐतिहासिक तथ्य में परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार एक सामान्य तथ्य भी ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। किसी महान इतिहासकार द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है। इतिहासकार अगाध तथ्यों में से केवल उन्हीं तथ्यों का चयन करता है जो उसके वर्णन को सरल तथा सुबोध बना सके। इस प्रकार इतिहासवाद में कोई भी तथ्य निरपेक्ष नहीं होता है, जहाँ चयन तथा परित्याग की प्रक्रिया है। सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार निरपेक्ष सत्य तथा यथार्थ की इतिहास में परिकल्पना असंभव है। E.H. कार का ऐतिहासिक तथ्य के संबंध में निष्कर्ष है कि ऐतिहासिक तथ्य शुद्ध नहीं होता और इतिहासकार को कभी शुद्ध तथ्य भी प्राप्त नहीं होता। हमें यह संतोष करना चाहिए कि उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य का स्वरूप क्या है अथवा इतिहासकार उनके प्रयोग द्वारा कैसे इतिहास की रचना करता है, यह महत्वपूर्ण विषय है। क्रिस्टोफर ब्लेक के अनुसार इतिहासकार अपनी रचना व्याख्या से प्रारंभ करता है। ऐतिहासिक तथ्य संबंधी अपने निष्कर्ष में एडम स्कैफ ने प्रख्यात विद्वान विटोल्ड कुला को उद्धृत करते हुए कहा है कि प्रत्येक तथ्य का संकलन तथा चयन समाज संबंधी ज्ञान तथा उसकी प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। विभिन्न प्रकार की कसौटियों द्वारा अनेक शताब्दियों से सुरक्षित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास की प्रामाणिकता को सिद्ध करता है। अतः इतिहास ज्ञान में महत्वपूर्ण अभिवृद्धि करता है। यह सत्य है कि सदियों से सुरक्षित तथ्यों के आधार पर रचित इतिहास ज्ञान की उपादेयता को प्रमाणित करता है, परंतु सापेक्षवादी विचारकों ने तथ्यों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। उनका तर्क है कि इतिहासकार द्वारा संकलित तथ्यों का चयन तथा परित्याग और उनके द्वारा रचित इतिहास सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता मात्र की पूर्ति करता है। ऐसी रचना में इतिहासकार की व्यक्तिगत रुचि तथा सामाजिक आकांक्षाओं का प्रस्तुतिकरण निर्णायक होता है। ऐसे इतिहास की यथार्थता पूर्ण रूपेण संदिग्ध है। सार्वभौमिक मान्यता की कल्पना मात्र दिवा स्वप्न के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दो, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी। गोएथ्स ने कवि, साहित्यकार तथा इतिहासकार की रचना के संबंध में कहा है कि कवि अपने काल्पनिक विश्व की संरचना मनोनुकूल विधि से करके उसके प्रस्तुतिकरण को उपयुक्त मानता है। इतिहासकार भी अतीत के परिकल्पनात्मक विवरण प्रस्तुत करते समय अनेक प्रतिबंधों से बंधा रहता है। उसके समक्ष सदियों से सुरक्षित वस्तु सामग्री प्रयोगार्थ प्रतीक्षारत है। यही कारण है कि इतिहासकार कभी भी सर्वोपयुक्त रचना नहीं प्रस्तुत करेगा। फिर भी उसकी रचना में शोध, संकलन, अतीत संबंधी अनेक तत्वों को एकत्र कर एक सूत्र में श्रृंखलाबद्ध करने का प्रयास स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। इस प्रकार कोई भी इतिहासकार अपनी परिकल्पनात्मक रचना में वस्तुनिष्ठा का दावा नहीं कर सकता है, यद्यपि वह वस्तुनिष्ठा के लिए प्रयासरत रहता है। वस्तु सामग्री की अनेकता उसके प्रयास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसकी उपेक्षा उसके लिए असंभव है। एडम स्कैफ के अनुसार वस्तुनिष्ठा का अभिप्राय निष्पक्षता तथा न्याय का सामान्य मूल्य होता है। पोलिश इतिहासकार माइकल बोब्रोजिस्की ने ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के संबंध में कहा है कि इतिहासकार की निष्पक्षता इतिहास में परिणाम प्राप्ति का एक प्रयास होता है। इसके लिए परिपक्व ज्ञान, उपयुक्त शोध विधा, कठिन अध्यवसाय की आवश्यकता होती है। अथक प्रयास के बावजूद उसका कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इतिहासकार सदैव एक मनुष्य ही रहेगा। एक मनुष्य के रूप में उस पर संस्कार, परिवार, माता पिता, जाति, समाज, धर्म का प्रभाव अपरिहार्य होता है। वह कितना ही निष्पक्ष होने का प्रयास करे, इतिहासकार अपने को इन प्रभावों से उन्मुक्त कर सकता है। वह जो कुछ भी लिखता है अपने समाज के लिए लिखता है। साहित्यकार की भांति वह समाज का प्रतिनिधि होता है। वह अपनी रचनाओं में समाज की आवश्यकताओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। अतः वह अपने को सामाजिक द्वेष, रीति रिवाज, संस्कार, जातिगत द्वेष तथा ईर्ष्या से अलग नहीं कर सकता। यही कारण है कि सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहासवादी ज्ञान पर कठोरतम प्रहार किया है। उनके अनुसार इतिहासवादी ज्ञान में कभी भी निरपेक्षता संभव नहीं है। इतिहासवाद में वस्तुनिष्ठ निरपेक्ष ज्ञान की कल्पना एक महान भूल है। इन सापेक्षवादी चिंतकों ने सर्वाधिक प्रहार आधुनिक इतिहास के कोलंबस रांके के इतिहासवाद सिद्धांत पर किया है। रांके के अनुसार इतिहास कार्यालय का पुनीत कार्य अतीत का अवलोकन कर वर्तमान को प्रशिक्षित करते हुए भविष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। उस महान कार्यालय का कार्य इस आकांक्षा मात्र की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं है, अपितु इससे भी अधिक उसका पुनीत कर्तव्य अतीत का यथावत प्रस्तुतिकरण भी है। अतीत का प्रस्तुतिकरण यथावत संभव नहीं है, क्योंकि इतिहासकार तथ्यों का संकलन अपनी तथा समसामयिक सामाजिक रुचि के अनुसार करता है, अतः उसकी रचना में द्वेष सर्वत्र परिलक्षित होता है। एडम स्कैफ भी सापेक्षवादी सिद्धांतों से सर्वाधिक प्रभावित थे। उन्होंने ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा के निरपेक्ष स्वरूप को अस्वीकार किया है। उनके अनुसार समसामयिकवादी ने इतिहास के वस्तुनिष्ठ स्वरूप को प्रत्येक युग में प्रभावित किया है। एफ एच ब्रैडले का भी अभिमत है कि समसामयिकवाद के निरंतर प्रभाव के परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा सदैव प्रभावित होती रहती है। इस प्रकार ब्रैडले ने भी सापेक्षवादी अवधारणा की पुष्टि की है। नैतिक न्याय, मोरल जजमेंट। यदि मानव सभी पदार्थों का मापदंड है और सार्वभौम नैतिकता असंभव है, नैतिक नियमों की स्थापना रीति रिवाज तथा परंपराओं पर आश्रित है। सामाजिक परंपराओं के साथ नैतिक नियम बदलते रहते हैं। यह सत्य है कि नैतिकता वस्तुनिष्ठ नहीं है। नैतिक नियम निर्बलों द्वारा सबलों से अपनी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यह प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस पर आधारित है। दूसरा, नैतिक नियम सबलों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा यूरोपीय राज्यों पर आक्रमण तथा फ्रांसीसी साम्राज्य में उनका विलय वैयक्तिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उचित बताया। मुसोलिनी द्वारा अबिसिनिया पर आक्रमण, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नागासाकी हिरोशिमा पर अणुबम का प्रयोग, वियतनाम पर हवाई आक्रमण तथा इजरायली सेना द्वारा अरब फिलिस्तीनी बच्चों की अमानुषिक हत्या के औचित्य को सबलों ने नैतिकता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं अपितु राज्य के हित में किए गए बताए जाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा राज्य का हित सर्वोपरि होता है। इतिहास में नैतिक न्याय के प्रबल समर्थक बटरफील्ड तथा एक्टन रहे हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में इतिहास लेखन की एक नवीन प्रवृत्ति का अभ्युदय हुआ, जिसका अभिप्राय समसामयिक समाज को नैतिक शिक्षा देकर नैतिकता से अवगत कराना था। इंग्लैंड इस प्रवृत्ति का मूल केंद्र बन गया। इंग्लैंड के दार्शनिकों स्पिनोजा, जॉन लॉक तथा फिट्से ने इस समाज में नैतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इंग्लैंड की जनता इतिहासकारों से अपेक्षा करती है कि वे स्पष्ट करें कि क्या नेपोलियन बोनापार्ट एक अच्छा गुणवान व्यक्ति था। बटरफील्ड ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास के गरिमा में कार्यालय से अपेक्षा की जाती है कि वह नैतिक न्याय की अभ्यर्थना को उठाए, क्योंकि भावी पीढ़ी की अभ्यर्थना ईश्वर की अभ्यर्थना होती है और इतिहास की वाणी भावी पीढ़ी की पुकार होती है। अमानसिक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इतिहास के अमर दंड से बचने नहीं देना चाहिए। अब इतिहास का नैतिक न्याय के प्रश्न पर समझौता करता है तो विवादपूर्ण विषयों पर न्याय देने के अधिकार को खो देता है। नैतिक न्याय देने संबंधी इतिहासकार के अधिकार को दबाने के लिए पृथ्वी की संपूर्ण शक्तियां सतत प्रयत्नशील हैं। सापेक्षवादी विचारकों ने नैतिकता पर कठोर प्रहार किया। उनके अनुसार नैतिकता तथा आचार संहिता का आदर्श सार्वभौमिक हो ही नहीं सकता। नैतिकता की अवधारणा एक समाज से दूसरे समाज में एक समान नहीं होती है। सापेक्षवादियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उन लोगों की नैतिक संहिता को समाप्त कर दिया। नैतिक न्याय के संबंध में इतिहासकार निरपेक्ष अधिकार एब्सोल्यूट पावर्स का दावा नहीं कर सकता। इतिहासकार को समाज सेवकों का सेवक होना चाहिए। दंड देने वाला न्यायाधीश अथवा दंड देने वाला निरंकुश शासक की भूमिका को निभाना उसकी महानतम भूल होगी। 4. सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यू। सापेक्षवादी अवधारणा का मूल तत्व है गतिशीलता, मोशन तथा परिवर्तन, चेंज। सृष्टि में कुछ भी स्थायी तथा शाश्वत नहीं है। सामाजिक गतिशीलता के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। सामाजिक परिवर्तन के साथ सामाजिक मूल्य निरंतर बदलते रहते हैं। इतिहासकार का अभिमत है कि इतिहासकार की व्याख्या सदैव उद्देश्य परक तथा मूल्य संपृक्त होती है। इतिहासकार समसामयिक समाज का प्रतिनिधि होता है। सामाजिक मूल्य के संदर्भ में वह इतिहास की व्याख्या करते समय अपने समाज की रुचि प्रस्तुत करता है। सामाजिक मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं। किसी युग में दास प्रथा, जाति प्रथा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की उपादेयता सामाजिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में यथोचित तथा सर्वमान्य थी, परंतु वर्तमान में उसे अभिशाप के रूप में देखा जाता है। गिबन ने रोमन साम्राज्य के पतन का कारण नैतिक मूल्यों का पतन स्वीकार किया है, जबकि कार्ल मार्क्स ने पतन का प्रमुख कारण आर्थिक स्वीकार किया है। सापेक्षवादी विचारकों का अभिमत है कि सामाजिक मूल्यों की विभिन्नता तथा निरंतर परिवर्तनशीलता के कारण इतिहासकार को व्याख्या में इसे महत्व नहीं देना चाहिए। प्रत्येक युग में बुद्धिजीवी समसामयिक सामाजिक मूल्यों का उग्र प्रतिरोध करते रहते हैं। सापेक्षवादी विचारकों ने कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास संबंधी आर्थिक व्याख्या को भी चुनौती दी है। उसके अनुसार मार्क्स की आर्थिक व्याख्या विशेष समाज के संदर्भ में की गई है, उसकी कोई सार्वभौमिक मान्यता नहीं हो सकती है। यही कारण है कि अमेरिका तथा यूरोप के अनेक विद्वानों ने मार्क्सवादी सिद्धांतों की कटु आलोचना प्रस्तुत की है। यही नहीं, सापेक्षवादी विचारकों ने इतिहास में स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन तथा मूल्यांकन एवेल्युएशन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की है। इतिहास अध्ययन में सापेक्षवादी सिद्धांत ने एक नवीन चेतना को जागृत किया है। इसे एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। समीक्षा कंक्लूजन। सापेक्षवादियों दार्शनिकों का मूलभूत सिद्धांत है कि मानव ही सभी पदार्थों तथा मानव समाज का मापदंड होता है। इसलिए सोफिस्ट विचारकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मानव जाति के समुचित अध्ययन का माध्यम मानव है। हेनरी पीरेन का अभिमत है कि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। यही कारण है कि स्टॉक जैसे विद्वान ने इतिहासकार को ज्ञान का समाजशास्त्र कहा है। सापेक्षवादी अवधारणा के अनुसार यदि मानव जाति के अध्ययन के लिए मनुष्य समुचित प्रधान समुचित साधन है तो सभी मनुष्य के दृष्टिकोण में समानता का अभाव अपरिहार्य है। परिणामस्वरूप इतिहासवाद में निरपेक्ष ज्ञान यथार्थ नहीं अपितु एक स्वप्नलोकी कल्पना है। कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री लेखन संबंधी योजना की पूर्व संध्या पर विद्वानों के बीच एक्टर ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हमारे वाटरलू का विवरण ऐसा हो कि फ्रेंच, डच, जर्मन तथा इंग्लिश विद्वान एकमत से स्वीकार करें। आज हम एक्टन के प्रशंसनीय उत्कृष्ट विचार का सम्मान और स्वागत करते हैं। इस उच्च कोटि के सराहनीय प्रयास के बावजूद इस महान विद्वान का उत्कृष्ट आदर्श भावी पीढ़ी के इतिहासकारों का मार्गदर्शन करने में असफल रहा है, क्योंकि जातिगत रुचि, संघर्ष, संस्कार, व्यक्तिगत स्वार्थ ने उसकी रचना को सदैव प्रभावित किया है। ऐसी परिस्थिति में इतिहासवाद में निरपेक्ष ज्ञान की कल्पना एक महान भूल है। सापेक्षवादियों द्वारा इतिहास की कटु आलोचना का यही आधार है। अमेरिकन विद्वान कार्ल बेकर के अनुसार प्रत्येक युग का इतिहासकार इतिहास की व्याख्या अपने युग की सामाजिक आवश्यकता तथा रुचि के अनुरूप करता है। इसी संदर्भ में कार्ल बेकर ने पुनः कहा है कि प्रत्येक युग में इतिहास लेखन निरंतर होना चाहिए। परिणाम स्वरूप इतिहास के स्वरूप में विभिन्नता अपरिहार्य है। इस प्रकार समसामयिकवाद स्वयमेव सापेक्षवाद होता है। यद्यपि ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद के जनक फादर ऑफ हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म रांके ने अपने शिष्यों को इतिहास लेखन में निष्पक्षता इम्पार्शियलिटी तथा युग प्रवाह से मुक्त करने की दीक्षा दी थी, परंतु रांके की यह स्वप्न लोकीय कल्पना संभव नहीं हुए। परंतु रैंडल ने रांके के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि कैसे कोई इतिहासकार अपने को युग प्रवाह से मुक्त कर सकता है। युग प्रवाह के विपरीत चलने वाला कोई भी व्यक्ति इतिहास में सफल नहीं हुआ। इसलिए समसामयिकवाद का संबंध सदैव विषयवाद तथा सापेक्षवाद से रहेगा। यही इतिहासवाद की यथार्थता है। कार्ल बेकर ने स्पष्ट लिखा है कि समसामयिकवाद से जो असंतुष्ट है उनका अतीत से असंतुष्ट होना अपरिहार्य है। समसामयिकवाद ने अतीत को सदैव प्रभावित किया है। अतीत के गर्व से ही वर्तमान का आविर्भाव हुआ है। यदि सापेक्षवादी अवधारणा की विशेषता गतिशीलता तथा परिवर्तन है तो वर्तमान के संदर्भ में अतीत संबंधी ऐतिहासिक विचार तथा कल्पना को परिवर्तित होना पड़ेगा। इस प्रकार विचार तथा परिकल्पना का स्वरूप सापेक्षवादी स्वयमेव बन जाता है। इस प्रकार प्रत्येक युग का इतिहास विषयवाद है। परिणाम स्वरूप उसका सापेक्षवादी होना ही इतिहासवाद की विशेषता है। सभी ऐतिहासिक संरचना का स्वरूप चयनात्मक सेलेक्टिव होता है। चयन एवं परित्याग की यह प्रक्रिया द्वेष युक्त है। यद्यपि रांके ने निष्पक्षता तथा समसामयिकवाद के प्रभाव से अपने शिष्यों को अलग रहने की आदर्श दीक्षा दी थी, उनके विचारों से इतिहास में साक्षात ईश्वर के रूप का दर्शन होता है। उनके अनुसार 1870-71 में फ्रैंको प्रशन युद्ध ने परंपरावादी यूरोप की क्रांति युग एज ऑफ रिवोल्यूशन पर विजय को प्रतिबिंबित करता है। चार्ल्स पियट के अनुसार इस अवधारणा को 19वीं सदी के देशवादी द्वेषवादी अवधारणा का परिणाम कहा जा सकता है। रांके की यह अवधारणा विषयवादी है, अतः विषयवादिता को सापेक्षवादी कहा जा सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि इतिहास का कोई पक्ष निरपेक्ष तथा वस्तुनिष्ठ नहीं है। परिणाम स्वरूप इतिहासवाद पूर्ण रूपेण सापेक्षवादी है तथा रहेगा।